Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वो अपने नौकरों को अपने सेवकों को गंदा रखते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि है. उनके सेवक प्रसन्न नहीं है तो इसका मतलब कि उनके जीवन में कहीं न कहीं प्रसन्नता नहीं है. तो जैसे भगवान का सेवक देखो, हम और क्या बोले, महर्षि बैठे हैं. ये तो अपनी वाणी आपके सम्मुख बोल के हमको कितना बड़ा सौभाग्य मिला. गिरीश भाई कह रहे थे कि ये तो बड़ा मामला खराब है जी, खतरनाक है. ठीक है, इनका प्रेम है जो ये ऐसे बोलते हैं और हम उसको स्वीकार करते हैं. ये महाराष्ट्र का जो जीवन है, एक एक घटना से हमको सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन कैसे उत्कर्ष को प्राप्त हो. हम एक व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते और हम भगवान को खुश करने की बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है. हम एक पति को या एक पत्नी को खुश नहीं रख सकते और हम भगवान को खुश करने की बात करते हैं, हो ही नहीं सकता. पहले अपनी प्रसन्नता बढ़े, अपने आसपास के लोगों की हमको देख के प्रसन्नता हो, फिर हम भगवान की या गुरु की प्रसन्नता की बात सोच सकते हैं. तो हमारा जीवन जितना हमारे हाथ में है उसको हम प्रसन्न करें, उसको हम आनंदित करें. हम किसी से वाद विवाद न करें, हम किसी को ठेस न पहुंचाएं. दूसरा ठेस पहुंचाता हो तो हम उसको पचा लें. ये शिव से सीखना है. जहर पीने को मिल रहा है और वो जहर पी रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम जहर कैसे पिए, हम विष कैसे पिए. तो विष पिएंगे तो हृदय में जो भगवान है उनको तकलीफ होगी, और यदि हम न पिए तो इस सारे के सारे संसार को कष्ट होगा. तो उसको उठा के गले में रख लिया, नीलकंठ हो गए. तो ये जो विधा है, ये जो विद्या है, वो हमको शिव से मिल रही है. तो कोई बुरी बात मिलती है तो उसको हम चुपचाप धारण कर लें, न किसी से बोलें न उसका प्रत्युत्तर करें. ये महाराज जी की जो जीवन में है ये साक्षात दिखता है. महाराज जी के जीवन की घटना है. यहां मुंबई में एक महात्मा थे, वो महाराज जी की सेवा में आए कुछ दिनों के लिए, और उनके महाराज जी उनके विषय में बताते हैं कि उनको किसी न किसी से झगड़ा करने की आदत थी. जब तक किसी को 10 बात सुना न लें और उससे झगड़ा न कर लें तब तक वो चैन से नहीं रह सकते थे. एक दिन हुआ क्या कि सब लोग अजंता एलोरा है कुछ यहां आसपास, तो वहां सब लोग चले गए. महाराष्ट्र के पास कोई नहीं था, वही थे. अब वो उनसे पूछा गया कि आप भी चलोगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी के, मैं अकेले रह सकता हूं, आप सब लोग जा सकते हो, भोजन हो गया है, तुम लोग शाम तक लौट आओगे, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम भजन करेंगे, तुम सब लोग जा सकते हो. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं जाना है, हम महाराज जी के पास रहेंगे. जब सब लोग चले गए तब वो महाराज जी के पास आए कि देखा लोगों को, हमको नहीं ले गए. अब इस बात को लेके, और आपने भी कहा क्यों नहीं कि इनको जाना चाहिए, आपने क्यों नहीं हमारी वकालत की. महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, तुम उनसे झगड़ लेना, तुम्हारे झगड़े का कोटा पूरा हो जाएगा. हम भजन के लिए यहां रुके हैं, हमको भजन करने दो. तो ये जो स्वभाव है हमारा. अच्छा, आप अपनी वृत्ति को, महाराज जी का जो शीशा है वो हम आपको आपके सामने रखते हैं, आपको देखना हो कि ना देखना हो. महाराज जी यहां पे ही बोल के गए कि बंबई वालों के सामने मैं अपनी सारी बातें रख देता हूं, पर मैं सुधारने का ठेका नहीं ले रहा हूं कि सब मैं आपको सुधार के जाऊंगा, ऐसा नहीं. मैं बात रखता हूं, आपको काम आवे तो रखना, नहीं आवे तो न रखना, हमको इसका दुख नहीं है. तो महाराज जी कहते हैं कि आप अपनी वृत्ति को देखते रहो. हमारी वृत्ति कैसी है? आज मोदी ने नोट बदल दिया, बहुत बुरा किया. ट्रेन लेट आई, बहुत बुरा हुआ. ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ. ये सारा हमको बुराई देखने का ठेका मिला है क्या? सारे संसार का ये खराब है, ये खराब है. आज समय से सत्संग शुरू नहीं हुआ, आज जिनको अध्यक्ष बनना था वो नहीं आए, उनकी तबीयत खराब. हे भगवान, सारा का सारा खराबी की लिस्ट बना के बैठे हुए हैं. ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. ये ठेकेदारी हम क्यों कर रहे हैं भाई? अपना जीवन हम क्यों नहीं देखते कि हमारे जीवन में क्या क्या खराबी रह गई है, उस पर दृष्टिपात क्यों नहीं करते? हम झूठ क्यों बोल रहे हैं, हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हमारे में लोभ की वृत्ति है उसको हम क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। तो ये जो सत्संग का प्रभाव है या जो सत्संग की वाणी है, ये हमारे जीवन को सुधारने के लिए है। इस बात को हम कब समझेंगे? महाराज जी इस आनंद वचनामृत में, आनंद कथामृत में इस बात को बोलते हैं। ये आनंद कथामृत, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 18 दिन का प्रवचन है महाराज जी का, और भिन्न भिन्न विषय पे एक दृष्टिपात है। हमारे जीवन के लिए ही है ये, और इसमें भगवान की छोटी छोटी लीलाओं को उदाहरण के रूप में रख के महाराज जी ने भक्ति का उदाहरण दिया है कि भक्ति कैसे कैसे होती है और भगवान से भाव कैसे कैसे बनते हैं। उसमें बता रहे हैं कि एक गोपी, गगरी बोलते हैं क्या आप, जो मिट्टी के होते हैं, गागर, गागर, तो एक गागर, गागर के ऊपर दूसरी गागर, गागर के ऊपर तीसरी गागर, ऐसे करके 3-4 गागरें रख के और पकड़ी हुई, और 2 गागर और अगल बगल भी ऐसे, तो लेके और आ रही है यमुना जी का जल भर के। तो यमुना जी का जल भर के आ रही है, तो करील के कांटे होते हैं, वृंदावन में आप लोग गए होंगे परिक्रमा में गोवर्धन की, तो करील के छोटे छोटे वृक्ष होते हैं और उनके कांटे होते हैं और झाड़ियां जरा तितर बितर होती हैं, तो उसमें उसकी चूनर या जो साड़ी थी वो फंस गई पीछे से। अब वो आगे न बढ़ पावे, अगर जाएगी तो वस्त्र फट जाएंगे। तब तक ये नटखट हमारे नंद किशोर, कृष्ण कान्हा, मुरलीधर, चित चोर, माखन चोर, जितने चोर हैं सारे चोर सब लगा दो, दिल, ये दिल को चुराने वाले, मंद मंद मुस्काने वाले, ठुमकते ठुमकते जैसे कोई बच्चा मस्ती से चलता आ रहा हो, कैसे इधर उधर पैर फेंकता हुआ, कभी एक पैर इधर कभी एक पैर उधर, आगे सामने क्या क्या रे, तो कहे कि मेरी चूनर फंस गई है, छुड़ाएगा क्या? तो अब उसे तो छुड़ाऊंगा तो तू देगी क्या? तो कहे मेरा हाथ फंसा हुआ है, मेरे सिर पे इतने बोझ है, तेरे को लेने की पड़ी है। तो कहे लूंगा नहीं तो छुड़ाऊंगा नहीं। तो कहे भाई कुछ अभी तो नहीं है, बाद में आके शाम को ले जाना। क्या ले जाना? मक्खन ले जाना। ठीक है, सौदा तय हो गया। अब उन्होंने छुड़ा दिया, फिर भी वो वहीं खड़ी थी। तब तक पीछे से और गोपियां आ गईं। उन्होंने कहा क्या खड़ी है बावरी जैसे यहां पे? तो कही कि ऐसी ऐसी घटना घटी। तो कही ठीक है, घटी तो घटी, अब तो चल। तो कहे अरे उसने वस्त्र तो छुड़ाया पर मन उलझा दिया, जो हमारा उलझा हुआ वस्त्र था वो तो छुड़ाया पर मन ऐसा हमारा उलझ गया कि अब यहां से हिल ही नहीं सकते। तो ऐसे कृष्ण की लीला का महाराज जी ने इसमें बहुत ही रसीला वर्णन किया है। क्या कि बिहारी जी के पास आप जाते हो? तो यहां जाते हैं। तो क्या एक पर्दा पड़ता है वहां पे और खींचते हैं। तो क्या क्यों पर होता है ये? तो क्या ये जो छलिया है, ये जो रसिया है, ये चित्त को ऐसा खींचता है कि सास और बहू आई, तो सास को तो छोड़ा और बहू को पकड़ लिया, आंख से आंख लड़ गई। अब नई नई बहू और उससे रूप देखा तो भगवान को ऐसी लट्टू हुई कि वो वहीं की वहीं उसका पूरा हो गया शरीर। अब वो सास आई तो बड़ा उलाहना कि तू सुधरेगा नहीं। और फिर हमारे पुजारी जी, पंडित जी लोग फिर उसमें पर्दा डालने का काम शुरू किए कि न जाने कितनों को यहां पे ऐसा ऐसा करेगा, किसको फंसाएगा। तो इस ढंग से ये बिहारी जी को वहां पे ये हुआ, बिहारी जी पे पहरा लगाया गया रात में कि भाई यहां पे सामने एक सेवक लगा दो कि रात में कुछ आए ना, कुत्ते उत्ते ना घुस जाए मंदिर में। पहले पट नहीं हुआ करते मंदिरों में, तो देखा कि रात में निकल के जा रहे हैं और रुंझुन रुंझुन उनके पायल बज रहे हैं। तो पूछा कहां? उस पहरेदार ने पूछा कहां? तो कहे भाई शाखा है, विशाखा है, ललिता है, सारी सखियां हमारा निधि कुंज सेवा कुंज में इंतजार कर रही हैं, रास के लिए जा रहे हैं। तो कहे रास के लिए जा रहे हैं, हम भी चलें? तो कहे चलो। तो भाई वो भी गए साथ साथ। गए तो लौटने में भोर हुई, 4 बजा 5 बजा। तो वो भी सोए और ये भी सोया। अब वो सवेरे सवेरे पुजारी जी ब्रह्म मुहूर्त में आ गए, 3:30 बजे लगभग, वो 4 बजे लौटे और उसी समय पुजारी जी आ गए कि मंगला होगी। कहे अरे भाई अभी अभी तो ये लौटे हैं महाराज, और जगाओगे तुम? ये क्या अनर्थ करते हो, इनको सोने दो। तब से बिहारी जी की आरती 8 बजे होने लगी। मंगला का ये एक दिन होती है, वो भी जन्माष्टमी के दिन, उस बीच में कभी अब मंगला का प्रसंग ही नहीं, 8 बजे के तक सोते रहते हैं महाराज। तो इस ढंग से छोटी छोटी लीलाएं महाराज जी ने इसमें उद्धृत की हैं, भक्तों की और भगवान की। तो यही और भक्त और भगवान का जो भाव है, इसी के बीच को जो बंधन है इसी को तो भक्ति कहते हैं। भक्ति के आचार्यों ने बहुत मीठे मीठे उदाहरण दिए हैं और लगभग लगभग इसमें 18 भाव अन्य अन्य आचार्यों के हैं कि भक्ति क्या चीज है, भक्ति किसको कहते हैं। भागो भक्ति, जो हमको संसार और भगवान का भेद बता दे उसको भक्ति कहते हैं। जो हमारी अभिव्यक्ति को मीठा बना दे उसको भक्ति कहते हैं। महर्षि ने सभी आचार्यों का नाम लेते हुए आदर से इस ग्रंथ में उनका उद्धरण दिया है और हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है, जो कर्म है, जो ध्यान है, जो ज्ञान है, जो उपासना है, उसके बारे में भी बताया है। मैं समय 9:30 तक का है ना, और हमको लगता है कि हमने पूरा खींच ही दिया। महर्षि अपराध हो तो क्षमा करेंगे। तो हम यहाँ पे अच्छा, ज्ञान के गुरु कौन है भाई? कृष्ण है ना, जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया है वो कृष्ण को दिया है ना, और गीता हमारे लिए सारे के सारे संन्यास का जितना वर्णन गीता में है, कई अध्याय संन्यास योगुन नाम उच्यते, और कर्म का विभाग है उसमें, ध्यान का विभाग, भक्ति का है, कर्मयोग है। तो इस ढंग से गीता में ज्ञान है और गीता का ज्ञान दे कौन रहा है? यही छोरा, यही छोरा आपका गोपी वाला, गोपियों को, गोपियों के जो प्रेम पे नाचता है, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, उसको गोपियों ने नचा नचा के मार दिया वहां पे। हाँ, श्री रामा ने कहा कि मैं अपने दान लूंगा, उनको घोड़ा बढ़ा के उसके ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे कई सखा हैं, कई भाव हैं इस पुस्तक में, वो हैं कि कई ढंग के सखा हैं। एक तो जैसे जरा बड़े सखा हैं, वो बोलते हैं कृष्ण को, ये करो ये मत करो, ऐसे रहो ऐसे मत रहो, ऊपर मत चढ़ना गिर जाएगा, ऐसे ऐसे वाले भी सखा हैं। कई लोग एकदम साहचर्य साथ साथ का भाव मानते हैं, दोस्त गल बहिया कि चल ऐसे करते हैं, चल वैसे करते हैं, ये कृष्ण का साथ भाव। और कई लोग नर्म सखा हैं, जो आनंद देने के लिए कृष्ण को हंसा दें हम भगवान को, ऐसा वो उछल कूद करते हैं, वो कभी नाटक करते हैं, कभी खेल करते हैं, कभी जोकर बनते हैं कि हमारे कृष्ण खुश रहें। तो इस ढंग से अलग अलग भाव, चार ढंग के सखा, सखाओं का वर्णन इसमें महर्षि ने किया है कि हमारे सखा किस किस ढंग के होते हैं। हमारे जो सुदर्शन सिंह चक्र हैं, जो 6 दिन 7 दिन इस पे हमने कहा, उसमें उनकी बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा करी थी। तो इस ढंग से भगवान से हमारा कोई ना कोई संबंध होना चाहिए जीवन में, वो पिता के रूप में हो, वो भाई के रूप में हो, वो सखा के रूप में हो, वो ईश्वर के रूप में हो, किसी भी रूप में ईश्वर का प्राकट्य, ईश्वर का संबंध हमारे मन से हो। और मनुष्य का अर्थ ही ये है कि वो मन से सीता है संबंध, पति पत्नी है, चारों बहन अगर बगल में बैठी हो हमारे गिरीश भाई के, तो जब तक हमको बताया नहीं जाएगा तब तक हमको नहीं मालूम होगा कि ये बगल में कौन बैठी है। लेकिन चारू बहन या गिरीश भाई को बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये पति पत्नी है, इन्होंने उस संबंध को मन से सी लिया है। 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले चारू बहन को अगर ये देखे होते तो मालूम नहीं थी कौन ये लड़की है। क्यों 50 साल पहले? अच्छा, ये भी नहीं बताएंगे। चलो ठीक है। तो ये जो संबंध है, ये मनुष्य जीवन में हम मन से सीते हैं, ये बेटी है, ये बेटा है, कोई दूर से नहीं बता सकता ये कौन किस भाव में बैठे हैं, लेकिन हमारे मन में वो संबंध है। तो मनुष्य का अर्थ ही ये है कि मन से संबंध सी ले। तो हमारा जो संबंध ईश्वर से है वो हमको मन से ही सीना है। ये ज्ञान का जो संबंध है, ये एक महर्षि इसके बारे में बताते हैं, बताएंगे कि हम ज्ञान को किस चित्त में और या चित्त का लोप करके किस भाव में ले आके, या बेभाव के, अभाव के, किसका अभाव होता है, किसका भाव बनता है और किसका भाव ध्वंस होता है, ये सब यहां पे विधाएं हैं और उनमें हम प्रवेश करते हैं। महाराज जी की बातें बहुत सुनानी थी, पर बहुत अगर अवसर मिलेगा, और आज आशीर्वाद मिला है तिजोरी वाले जी का कि आप इसको कंटिन्यू रखना, और 2-4 लोगों ने भी आके कहा है कि आप इसको कंटिन्यू रखना, तो महाराष्ट्र का आशीर्वाद आप लोगों के रूप में हमको प्राप्त हो और हमारी वाणी महाराष्ट्र की सेवा में लगी रहे और ये जीवन उनके सेवा में जाए, इससे अच्छा और क्या होगा। नारायण 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 माधुरी पुत्र
शनो मित्र शं वरुण शनो भवत्पर्यम शनयन्द्रो बृहस्पति शनो विष्णु रुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शांति 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 सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य महाराज श्री आज जिनका ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है जो आराधन महोत्सव इसका नाम दिया है, दूसरा नाम है आनंद महोत्सव, तीसरा नाम है निर्वाण महोत्सव, त्रिवेणी संगम है और इसके कर्णधार प्रेमपुरी आश्रम और हमारे परम प्रिय परम सम्माननीय सोमदत्त जी। कल तो अकस्मात ही मेरे पास फोन आया गिरीश भाई का, कहा कि स्वामी जी कल आपको पधारना है और जगदीशपुरी जी की कुछ तबियत में गड़बड़ी है। हमने कहा भाई मैं तो हमेशा ही प्रेमपुरी का निमंत्रण आया तो मैं तो कभी भी, जब तक हमारा तो निश्चय है कि जब तक हमारा शरीर चले और स्वास्थ्य चले तब तक प्रेमपुरी की सेवा से हम कभी भी विरक्त नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमने कहा भाई क्या कारण है, उसके बाद ये पता चला कि आराधन महोत्सव यहां चल रहा है और उस निमित्त से ही आपको यहां सुबह सुबह ही 7:30 बजे तक पहुंचना है। उसके बाद शाम को चिमन भाई का भी फोन आया। चिमन भाई ने कहा कि स्वामी जी आप तैयारी करके आ जाना। हमने कहा क्या मतलब, कहा कि दवा विवाह भूलना नहीं। हमने कहा कहावत है बिच्छू का बिरहर तो अपने पीठ पर ही होता है। हम तो हमेशा ही तत्पर ही रहते हैं। परमार्थ में असावधानी नहीं होना चाहिए, परमार्थ में तो हमेशा ही सावधान होना चाहिए। सावधान जो होता है उसी का नाम साधक होता है। जिसके जीवन में सावधानी नहीं है वो साधक कभी बन नहीं सकता है। और हमारे गुरुजी ने शुरुआत में हमें कहा था कि बेटा सिद्ध कभी बनना नहीं और साधकपना कभी छोड़ना नहीं। जो जीवन भर साधक रहता है तो वही तो कुछ वस्तु को पाता है, तो सिद्ध बनता है ना, वो कुछ पाता नहीं है। पूज्य महाराज श्री के विषय में बहुत कुछ हमारे प्रिय सोमदत्त जी ने आपको जानकारी दी। महाराज श्री तो वास्तविक संत तुकाराम का एक वाक्य मुझे स्मरण आया, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी बोली ले जे ऋषि साच भावे वर्ताया। ये तो वैकुंठ में ही रहने वाले ईश्वर स्वरूप ही है। जो वैकुंठ में रहता है ना, वैकुंठ की परिभाषा है, आप लोग कल्पना करते हैं कि कोई अंतरिक्ष में कोई वैकुंठ नाम का लोक होगा, वो बात नहीं है, हमने कई बार बता चुके हैं। वैकुंठ देश का नाम होता है निरीक्ष अंतकरण, क्या जहां काम नहीं है, जैसा भगवान ने कहा प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ये जो स्थित प्रज्ञ स्थिति है अंतकरण में, देखो काम भी तीन प्रकार का है, एक इच्छा रूप काम है, एक वासना रूप काम है और एक संस्कार रूप काम है। काम की परिभाषा करने जाएंगे तो बहुत गहराई है और आप लोग जानते ही, हमारा तो क्या करें, मैं मजबूर होता हूं, बाहर की कथाएं मेरे को नहीं आती, संसार की कथा करना ही मेरे को आती नहीं है, तो उसमें मुझे कुछ तथ्य नहीं लगता है। तो जिसमें तथ्य नहीं लगता है वही आप लोग को बताए तो वो तो आप लोग जानते ही है। कहने का तात्पर्य काम बहुत गहरी चीज है और जिसने अपने जीवन में से जो गहराई में बैठा हुआ काम, जो संस्कार रूप काम है, अब प्रश्न ये होता है कि संस्कार रूप काम के पीछे भी क्या कोई काम है। सो काम ये तो श्रुति ने भी कहा कि उसने कामना की, अब वो ईश्वर की कामना कौन सी है? जीव की कामना अलग है, ईश्वर की कामना अलग है। ईश्वर की कामना क्या है? वैकुंठ किस देश का नाम कहा जाता है? जहां ईश्वर का भी काम समाप्त तो होता है ना, उस देश का नाम होता है वैकुंठ, समझिए ना। और उसी स्थिति को जो जीव प्राप्त करता है उसको वैकुंठवासी कहा जाता है। ईश्वर की काम और जीव का काम, जीव में तो काम जो आता है वो आता है अविद्या के गुणों से, क्या ध्यान रखना थोड़ा। देखो मेरा प्रवचन तो आप लोग जानते ही है, जो असावधानी होगी ना उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा और वो कहेंगे कि बाबा जी ने बताया तो बहुत अच्छा परंतु समझ में कुछ नहीं आया। देखो ईश्वर का काम और जीव का काम, जीव का काम जो निर्माण होता है तुला विद्या से निर्माण होता है, ध्यान रखो। और ईश्वर का काम जो निर्माण होता है वो मूला विद्या से निर्माण होता है। क्या एको हम बहुश्याम प्रजाई, ये जो श्रुति कहती है एको हम, ये अहम का बोध कराने वाली, ये अहम का बोध हुआ तभी तो ब्रह्म तत्व ईश्वर भाव को प्राप्त हुआ है। क्या देखो, ईश्वर यदि काम वाला नहीं होता तो ईश्वर में काम निर्माण नहीं हो सकता था। क्या ईश्वर जो निर्माण होता है वो भी काम से ही निर्माण होता है। अब वो काम कौन सा है उसी को ही शास्त्र ने, वेदांत शास्त्र में मूला विद्या कहा है। मूला विद्या का नाम ही ब्रह्म विद्या है। क्या मूला विद्या का नाम ही वास्तविक ब्रह्म विद्या है, जिसको अद्वैत सिद्धिकार लेशा विद्या कहा जाता है। ये बाधक नहीं है, इसलिए ईश्वर की माया ईश्वर को बाधक नहीं है, परंतु जीव की अविद्या जीव को बाधक है। ईश्वर ने जब काम किया, कामना की, तो ईश्वर के काम से ईश्वर के ही तीन रूप बन गए। क्या ईश्वर ही त्रिरूपधारी बन गया, जिसको हम पौराणिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और इन्हीं से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। बहुश्याम प्रजाये, जो प्रजा, देखो इस संकल्प में तीन वस्तु है, क्या क्या तीन वस्तु है? संकल्प है, संकल्प के पूर्व में ज्ञान है, और संकल्प के बाद कर्म है, बीच में संकल्प है। संकल्प क्या है? बहुश्याम। कर्म क्या है? प्रजाए। ज्ञान क्या है? अहम। ये तीन वस्तु है। जो इसमें जो अहम है, अहम, ये अहम को ही ईश्वर कहा गया है। एको हम, ये जिसको बोध हुआ है उस बोधवान का ही नाम है ईश्वर। जब अपना बोध होता है तब ही आप संकल्प कर सकते। अपना ही बोध नहीं है तो संकल्प होगा क्या? सुषुप्ति में आपको अपना बोध नहीं होता है तो कोई संकल्प हो सकता है? नहीं। जब जग जाते हैं, सुषुप्ति से बाहर आ जाते हैं, तब पहले, सबसे पहले आपको अपना ज्ञान होता है, और अपना ज्ञान होने के बाद फिर संकल्प स्फुरित होता है, और संकल्प से फिर कर्म निकलता है, क्रिया निकलती है, वो आगे की प्रक्रिया है। देखो ये जो इसमें जो संकल्प की समाप्ति जहां होती है, समझ रहे ना, संकल्प की समाप्ति कब होगी? कर्म समाप्त होने से संकल्प की समाप्ति नहीं होती है। और आराधना का मतलब क्या होता है? आराधना का जो आसमंतात राधयतीति आराधना, समझे ना, अर्थात पूर्ण रूप से संकल्प का निवृत्ति हो, समाप्ति हो, या देखो संकल्प की समाप्ति कब होती है? संकल्प मिटाने से संकल्प की समाप्ति नहीं होती, ध्यान रखो। संत तुकाराम ने कहा है, संकोचो निकारे झाला शिलान घी अपोषण ब्रह्मांडाची। संकल्प की समाप्ति करना है तो संकल्प को इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ कि सब उसके अंदर समा जाए। ये तो संकल्प को व्यापक बनाने की, महान बनाने की, ब्रह्म स्वरूप बनाने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम है आराधना। क्या? इसी के अंदर सभी की समाप्ति होती है, सभी का अंतर्भाव होता है, इससे बाहर कोई भी वस्तु नहीं होती है। ईश्वर का संकल्प संकीर्ण नहीं है, छोटा नहीं है, ईश्वर का संकल्प महान है, इसलिए ईश्वर को महान कहा जाता है। और जीव का संकल्प बहुत संकीर्ण है, बहुत अल्प है। क्या? ईश्वर को महान और जीव को अल्प क्यों कहा गया है? ये जीव अपने संकल्प से ही क्या बन गया है? छोटा बन गया है। और अब तो हम इतने देखो, वास्तविक स्वार्थ शब्द बहुत उत्तम है, परंतु लोगों ने इसका गलत अर्थ समझ लिया, गलत अर्थ चल पड़ा है। जीव को मैं स्वार्थी नहीं कह सकता हूं। संकीर्ण कह सकता हूं। जीव इतना संकीर्ण बनता जा रहा, इतना संकीर्ण बनता जा रहा, जितना संकीर्ण बनता जाएगा उतना ही वो दुखी होता जाएगा। ईश्वर सुखी और जीव दुखी, इसका कारण क्या है? हमारा संकल्प ही हमें सुख रूप बना सकता है, संकल्प ही हमें दुख रूप बना सकता है। जिसने अपने संकल्प को संकीर्ण बनाया है वो दुखी है, और जिसने अपने संकल्प को महान बनाया है वो सुखी है। ईश्वर ने अपने संकल्प को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा है, ईश्वर ने अपने संकल्प को सर्वत्र व्यापक बनाया है। इसलिए तो श्रुतियों ने कहा कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। उसने निर्माण भी किया और उसने उसके अंदर प्रविष्ट भी हुआ। ईश्वर को खोजने के लिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सोमदत्त जी ने कहा कि मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य कौन है वास्तविक? प्रश्न ये होता है, किस मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध करना है? और ये संबंध करने वाली जो कड़ी है उसी को ही आराधना कहा जाता है। ये हमारा शरीर मनुष्य नहीं है, हमारा मन मनुष्य है। संस्कार जन्य जो मन है, इस संस्कार जन्य मन से ही हमने इस शरीर को मनुष्य माना है, स्त्री माना है, जीव माना है, सुखी दुखी माना है, कर्ता भोक्ता माना है, क्या क्या माना है। ये जितनी भी प्रक्रिया है मन के कारण ही तो